ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। नेकपा एमाले के 11वें महाधिवेशन द्वारा विधान संशोधन केंद्रीय कमेटी बनी 301 सदस्य की। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में संपूर्ण ध्यान केंद्रित करने का सरकार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौरेल ने दिया सुझाव। समावेशीकरण सामाजिक न्याय का संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की अर्थ समिति के पूर्व सभापति संतोष चालीसे विरुद्ध 3,68,00,000 रूपये से अधिक भ्रष्टाचार करने के आरोप में अख्तियार द्वारा मुकदमा दर्ज। और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडाई के बीच में गोलीबारी की घटना में हुई कम से कम 12 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले के 11वें राष्ट्रीय महाधिवेशन ने पार्टी का विधान संशोधन किया है। संशोधित विधान के अनुसार केंद्रीय समिति अब 301 सदस्यों की होगी। पहले के विधान में महाधिवेशन द्वारा 251 सदस्य केंद्रीय समिति रखने का प्रावधान था, जिसे 11वें महाधिवेशन ने संशोधित करके 301 सदस्य केंद्रीय समिति रखने की व्यवस्था की है। केंद्रीय समिति के आज के निर्णय के अनुसार अब एमाले में एक अध्यक्ष, 5 उपाध्यक्ष, 1 महासचिव, 3 उपमहासचिव और 9 सचिव मिलाकर कुल 19 पदाधिकारी होंगे। इसी तरह स्थायी समिति के सदस्यों की संख्या पॉलिट ब्यूरो की 1/3 रहेगी, जबकि पॉलिट ब्यूरो 99 सदस्य होंगे। काठमांडू में जारी एमाले के 11वें महाधिवेशन में आज से बंद सत्र के कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। आज बंद सत्र शुरू होने के साथ ही एमाले की केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची और नए नेतृत्व चुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित किया है। कल से शुरू हुए एमाले के 11वें महाधिवेशन के कल मार्गशीर्ष 29 गते सोमवार तक चलने की बात कही गई थी, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने इसे संशोधित करते हुए परसों पौष 1 मंगलवार तक का कार्यक्रम प्रकाशित किया है। प्रकाशित कार्यक्रम के अनुसार प्रतिनिधियों की सूची पर आपत्ति के लिए सोमवार सुबह 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है और कल ही उम्मीदवार नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। इसी तरह नए नेतृत्व चुनाव के लिए पौष 1 को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। जारी एमाले के महाधिवेशन में देश भर से 2,263 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौरेल ने आगामी प्रतिनिधि सभा के चुनाव पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए सरकार को सुझाव दिया है। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में आज आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का आर्थिक वर्ष 2081 विरासत की वार्षिक रिपोर्ट लेते समय राष्ट्रपति ने चुनाव को प्रभावित न करने वाले तरीके से काम करने का सरकार को सुझाव दिया। ये जानकारी उनके प्रेस सलाहकार किरण पोखरेल ने दी। राष्ट्रपति पौरेल ने पहले की तुलना में अत्यधिक सतर्कता के साथ सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान देने का निर्देश नेपाली सेना सहित सुरक्षा निकायों को दिया है। राष्ट्रपति पौरेल के समक्ष प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष सुशीला कार्की ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का वार्षिक वर्ष 2081 विरासत की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस अवसर पर राष्ट्रपति पौरेल ने भविष्य में आने वाली सुरक्षा चुनौतियों का आकलन करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा आगामी दिनों में अपनी जिम्मेदारी और अधिक प्रभावी रूप से निभाने का विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने कहा है कि संविधान द्वारा सुनिश्चित समावेशीकरण, सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक भाषिक विविधता का संरक्षण एवं संवर्धन करना राज्य का दायित्व है। आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रीय प्रतिष्ठान की 26वीं संचालक परिषद की बैठक का आज उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी जनजातियों की पहचान, अधिकार, संस्कृति और समग्र विकास के लिए प्रतिष्ठान द्वारा किया जा रहा योगदान प्रशंसनीय है। उन्होंने परिषद की बैठक से किए जाने वाले निर्णय, मार्गदर्शन तथा नीतिगत सुझाव राष्ट्रीय नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन में प्रासंगिक होंगे, ऐसा विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कार्की ने संस्थागत सुदृढ़ीकरण कार्यक्रमों की प्रभावकारिता और आदिवासी जनजातियों के सतत सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए परिषद की बैठक से स्पष्ट दिशा निर्धारित करने की अपेक्षा व्यक्त की। अंतर्राष्ट्रीय संगठन आईएलओ 1969 और आदिवासी जनजाति संबंधी संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार कानून संशोधन करने के लिए सर्वोच्च अदालत द्वारा दिए गए निर्देशनात्मक आदेश का सम्मान करते हुए समयानुकूल नियम कानून परिमार्जन के लिए कार्ययोजना बनाकर उसे कार्यान्वयन करने की दिशा में सरकार प्रतिबद्ध है। ये बात प्रधानमंत्री कार्की ने स्पष्ट की। आदिवासी जनजाति आयोग और थारू आयोग जैसे संवैधानिक आयोगों के गठन से अधिकारों के संरक्षण में सहायता मिली है। इसका उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आयोग और प्रतिष्ठान के बीच आपसी सहयोग और समन्वय के आधार पर साझा लक्ष्य हासिल करने की आवश्यकता है। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने काठमांडू के गोकर्णेश्वर नगर पालिका के तत्कालीन नगर प्रमुख और भंग प्रतिनिधि सभा के सदस्य तथा संघीय संसद के अंतर्गत आने वाली अर्थ समिति के तत्कालीन सभापति संतोष चालीसे के खिलाफ 3,68,00,000 से अधिक की गैरकानूनी संपत्ति अर्जित करने के आरोप में भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है। आयोग ने सार्वजनिक पद पर रहते हुए पदीय मर्यादा के विपरीत कार्य करके अस्वाभाविक संपत्ति जोड़ने का आरोप लगाते हुए 3,68,00,000 रूपये से अधिक की दावी राशि के साथ विशेष अदालत काठमांडू में मुकदमा दायर किया है। ये बात आयोग के सहायक प्रवक्ता गणेश बहादुर अधिकारी द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लिखित है। इसी प्रकार आयोग द्वारा दायर मुकदमे में गैरकानूनी रूप से अर्जित राशि जब्त करने के उद्देश्य से उनकी पत्नी मंदिरा चालीसे, पुत्र सागर चालीसे और संजीव चालीसे तथा बहू प्रमिला पोखरेल को भी प्रतिवादी बनाया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। संघीय संसद सेवा दिवस आज विशेष कार्यक्रम आयोजित कर मनाया गया। संघीय संसद सचिवालय सिंह दरबार में आयोजित विशेष समारोह में प्रतिनिधि सभा के सभामुख देवराज घिमिरे ने कहा कि प्रतिनिधि सभा का विघटन संसदीय व्यवस्था पर हमला है। सभामुख घिमिरे ने कहा कि संसद सरकार के अधीन कोई एक निकाय या शाखा नहीं है और न ही रह सकती है तथा उन्होंने संसद की स्वायत्तता पर आंच आने वाला कोई भी कार्य न करने की सरकार से अपील की। राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने जन आंदोलन के दौरान संघीय संसद भवन और सिंह दरबार की भौतिक संरचनाओं को हुई क्षति के कारण राष्ट्रीय सभा की बैठक आयोजित करना भी मुश्किल हो रहा है, ये बात कही। कानून न्याय तथा संसदीय मामलों के मंत्री अनिल कुमार सिन्हा ने कहा कि गुणवत्तापूर्ण कानूनी अनुवाद के लिए संसद सेवा के कर्मचारियों को विशेषज्ञता हासिल करना आवश्यक है और उन्होंने कहा कि संसद सेवा को स्वायत्त बनाने तथा संस्थागत और नीतिगत सुधारों के लिए मंत्रालय तैयार है। संघीय निजामती सेवा दिवस के अवसर पर संघीय संसद सेवा में कार्यरत 4 उत्कृष्ट कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें सर्वोत्कृष्ट संसद सेवा पुरस्कार 1,00,000 रूपये, उत्कृष्ट संसद सेवा पुरस्कार 75,000 रूपये और संसद सेवा पुरस्कार 50,000 रूपये 2 व्यक्तियों को प्रदान किया गया। संसदीय प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी, गरिमामय और व्यावसायिक बनाने के लिए अलग आयन द्वारा संसद सेवा का गठन किए जाने की स्मृति में हर वर्ष मार्गशीर्ष 28 को संसद सेवा दिवस मनाया जाता है। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री कुलमान घिसिंग ने कहा कि अगर विकास के काम उलझाए रखे जाते हैं तो फिर ठेका तोड़कर आगे बढ़ने का दूसरा विकल्प नहीं है। आज दोनों की शुक्ला गंडकी नगर पालिका में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री घिसिंग ने ये बात कही। ये बताते हुए कि काम में ढीलासुस्ती को सहा नहीं जाएगा, उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि उलझाकर रखी गई परियोजनाओं का ठेका तोड़कर नई प्रक्रिया के लिए टेंडर निकाले जाएंगे। उन्होंने शुक्ला गंडकी नगर पालिका वार्ड नंबर 5 में स्थित जीपी कोरला श्वास प्रश्वास उपचार केंद्र का भी आज निरीक्षण किया। चितवन राष्ट्रीय निकुंज के हाथी प्रजनन तथा तालीम केंद्र खोरसोर में पैदा हुए 2 हाथियों के छावों को आगामी पोस्ट 2 गते कतर भेजा जाएगा। प्रजनन केंद्र में परवरिश और तालीम दिए जाने के बाद सौराहा हाथीसार में ले जाए गए उन छावों को कतर भेजा जाएगा। राष्ट्रीय निकुंज तथा वन्य जंतु संरक्षण विभाग के सूचना अधिकारी डॉ हरिभद्र आचार्य के अनुसार इसी दिसंबर की 17 तारीख को कतर भेजा जाएगा। भैरवा विमानस्थल से चार्टर कार्गो विमान के जरिए कतर के दोहा स्थित अलखोर पार्क के चिड़ियाखाना में रखने के लिए उन हाथियों को भेजा जा रहा है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के सिडनी में बोंडी बीच पर गोलीबारी की घटना में 11 लोगों और एक हमलावर की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हुए हैं। पहले 10 लोगों की मौत की खबर आई थी। न्यू साउथ वेल्स पुलिस ने बताया है कि मरने वालों की संख्या 11 है। लोगों को निशाना बनाने वाला एक बंदूकधारी भी मारा गया है। 29 अन्य लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नेकपा एमाले के 11वें महाधिवेशन द्वारा विधान संशोधन केंद्रीय कमेटी बनी 301 सदस्य की। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में संपूर्ण ध्यान केंद्रित करने का सरकार को राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिया सुझाव। समावेशीकरण सामाजिक न्याय का संरक्षण करना राज्य की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का कथन। प्रतिनिधि सभा अंतर्गत की अर्थ समिति के पूर्व सभापति संतोष चालीस विरुद्ध 3,68,00,000 रूपये से अधिक भ्रष्टाचार करने के आरोप में अख्तियार द्वारा मुकदमा दर्ज और के सिडनी स्थित बॉन्डाई के बीच में गोलीबारी की घटना में हुई कम से कम 12 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।